परिणाम संकीर्तन तो हम सभी करते हैं, किंतु कैसे ये महामंत्र करें हम लोग, कीर्तन करें जैसे प्रेम आ जाए। की रूप लैले नाम प्रेम उपज, इसका आप कान बतलाइए। महाप्रभु जी ने इसका विचार किया, यदि कीर्तन हो रहा हो और उसमें दूसरे काम में रुचि हो, कीर्तन हो रहा हो, कोई लिख पढ़ रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, चुपचाप ऐसे बैठ गया, रुचि नहीं हो रही है, तो उसको प्रेम होगा कि नहीं? ये तो सीधी सी बात है। संकीर्तन के अतिरिक्त और किसी भी चीज से प्रीति होगी, प्रेम होगा तो नहीं होगा। अभी लिखना पढ़ना छोड़ देती, कैसे होगी? यदि ये विश्वास हो जो कीर्तन के द्वारा ही हमारा सब अभिष्ट हो जाएगा। कलयुग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि 9 प्रकार की बातें बतलाई गई, और इनमें भी 5 प्रकार की और बतलाई गई। पहले श्रवणम, सुनना, कीर्तनम सुन करके, बार बार सुन करके अपना उसका कीर्तन, केवल बाजा पर कीर्तन ही नहीं, हरि कथा के माध्यम से जैसे हो। विष्णु स्मरणम, जो सुना है जो गाया है उसी का स्मरण कर रहे हैं, हमने जो कथा कही उसको, भागवत की कथा हुई उसी को स्मरण कर, महाप्रभु जी की कोई लीला की कथा हुई, श्रवणम कीर्तन स्मरणम वंदनम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दर्शनम सक्षम आत्म अर्चन इत्यादि है, वंदना है, सौ स्तुति है, ये 10 प्रकार, 9 प्रकार की। और एक है साधु संघ, नाम कीर्तन, भागवत का श्रवण, ऋषि भी भागवत की जो कथा है, 2 प्रकार की कथाएं एक ही कथा में कुछ ऐसी हैं जो संसार के प्रति आसक्ति को काट करती, काट देती है और भगवान के चरणों में प्रेम लगाती, तो किसी में वैराग्य प्रधान है और किसी में प्रेम प्रधान है, किंतु दोनों चीजें हैं। तो पहले वैराग्य प्रधान कथाएं को सुनेंगे और इसके बाद में फिर धीरे धीरे प्रेम तो नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, वृंदावन इत्यादि में वास, यहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में हम लोग वास करते हैं, भजन भी करते हैं, बहुत से लोग यहाँ रहते हैं, बहुत विदेशों में रहते हैं, भजन करते हैं, किंतु गोवर्धन के समीप में बैठ करके भजन करें यमुना के किनारे तो कुछ और बात होगी कि नहीं होगी? इसी गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण ने धारण किया, उसी के तले में, उसी की धूली में हम बैठे हैं, मन स्वाभाविक रूप में लगे, आज ये तमाल का वृक्ष है, ये कदम्ब के वृक्ष है, अरे ये तो कोयल कुहक कह रही है, मोर देखो केका थोड़ी देर में ही बोलने लग जाएंगे अपने आप, इतने हिरण घर से निकले, अरे यही हिरण देखो कृष्ण के लीला में, कृष्ण की तरफ हार दूसरे करती हुई और एकदम कृष्ण को अपना ही सब कुछ अर्पण कर रही है, पति है उस समय में, सू पक्षी होता नहीं, हरे हरे, वो झुंड के झुंड वहां पर पेड़ों पर मिलेगी आपको स्वाभाविक रूप में, वहां पर नंदगांव में जाइए, बरसाना में जाइए, बरसाना में जाइए, वहां पर सकरी गली है ना, सकरी गली, सकरी फोर है, ऊपर में और चले जाए गहवर बन, कितनी सुंदर सुंदर दृश्य वहां पर, बहुत खुशी है, और सब चीजें इच्छा तो करते ही वहीं पर रम जाए, पर वहां पर नहीं जा सकते तो उनका स्मरण भी तो कर करके ये कर, साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास, मथुरावास माने ब्रज निवास, श्रीमुक्ति श्रद्धा है, अनुमुक्ति का श्रद्धा पूर्वक, ये 5 उसको संक्षेप किया गया, उसमें से और कर्टेल कर दो, श्रवणन कीर्तनन विष्णु स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, इनको और भी कम कर दो, तो श्रवण और कीर्तन को प्रधान कर। अब कीर्तन को थोड़ा जब श्रवण हो गया तो प्रधान हो गया स्मरण और कीर्तन, उन्हीं लीलाओं का स्मरण और उन्हीं लीलाओं उन्हीं का नामों का कीर्तन, उसको एक कर दो आप, एक प्रधान, तो क्या रह जाएगा? यद्यपि कलयुग में और भी साधन है भगवान के, किंतु सबसे बलवान और श्रेष्ठ क्या साधन है? ये हरिनाम। हरिनाम संकीर्तन करते हुए और उनकी लीलाओं का स्मरण करो और साथ साथ में कीर्तन के माध्यम से उनकी वंदना करो, कीर्तन के माध्यम से अर्चन पूजा इत्यादि भी ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, गंगे चैव गोदारी चैव नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम, अजय स्नान करते समय में ये भावना रहे कृष्ण गोचार अभी करने जाए, गैयाओं को दूसिए घर में आए, सहेलियां आ गई हैं रसोई बनाने के, सखा लोग धीरे 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 अपने घरों से तैयार होकर के आ गए, कृष्ण वहां पर है, कृष्ण को सखियां धीरे धीरे यशोदा जी ने कहा इसको तेल मलमल करके लगाओ, पॉपटन लगाओ और तब से आरम्भ कर दिया, और इसके बाद में कोई चीटी भी काट रही है कृष्ण को, कोई तरह तरह से उनको हंसा रही है और तेल भी लगा रही है, थोड़ी देर का आदमी सुंदर सोने की चौकी पर कृष्ण को बैठाता है सुंदर सुशीतल जल से। इसमें हमारा क्या लगता है? कुछ पैसा लगता है, किंतु कीर्तन के माध्यम से सब कुछ, कीर्तन के माध्यम
से
कीर्तन गोविंद दामो धर्मा, गोपियां उनको स्नान करा रही हैं, सखियां भी उनको स्नान कर रही हैं, राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणि मंडल महीते, राधे जय जय माधव दैते। कृष्ण एकदम स्नान स्नान करना छोड़ करके एकदम कान लगा करके कोई भी क्रिया हो कलयुग में कीर्तन के माध्यम से। कोई भी काम कर रहे हैं राधे जी की कृपा के लिए तरस रहे हैं, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, मैं राधा जी का भजन करता हूं, राधा जी बड़ी दयालु हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, मानो दया करने के लिए विफल हो रहे हैं, किसको दया करें, और नेत्र कैसे हैं, सुंदर सुंदर कमल जैसे, जैसे लाल और ऐसे उभरे हुए हैं, कृपा करने के लिए एकदम ऐसे राधा जी का मन, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, क्या और स्मरामि राधाम मधुरस्मिताभ्याम, और मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान करते ही हमारे तरफ में कृपा कर की कोर से देख रहे हैं, ऐसे राधा जी का स्मरण करता हूं। और इसके बाद बदामी राधाम करुणा भरा, फिर राधे मैं आप ही का भजन करता हूं, सब समय राधे 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 राधे, कृष्णा की एकदम समुद्र है वो राधे, ऐसे राधा जी को छोड़कर मैं किसके शरण में जाऊं, ऐसी प्रार्थना करते हुए कृष्ण कहीं मिल गए, कृष्ण की स्मृति हो गई तो कृष्ण से भी प्रार्थना करने लगे, अपनी प्रिया जी ऐसा कहो जैसे हमारे ऊपर में कृपा की कोर से एक बार तो देख लो, श्याम सुंदर श्याम सुंदर, क्या है वो श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर, स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरी। अपने प्रिया जी की किंकरी सुनिए, जन्म जन्मांतर उनकी सेवा। ये सब कीर्तन कहलाता है, किंतु ये स्तोमूलक कीर्तन है, कोई रूप का कीर्तन है, कोई कृपा की भिक्षा की कीर्तन है। तो राधा कृष्ण का कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का ये क्या जरूरत है, ये व्यर्थ नहीं हो गया? ये व्यर्थ क्यों? वो बलदेव प्रभु जी गुरु है और कृष्णचंद्र जी स्वयं नंदनंदन है। अपने प्रेम को देने के लिए जिस रूप में आएंगे वो कृष्ण से मांगने से और राधा जी से मांगने से नहीं जल्दी देंगे, किंतु ये देने के लिए ही प्रेम आए हैं इस रूप में, तो इसी रूप से पहले वंदना करें। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री जी को। अरे ये गदाधर जी तो राधिका जी, ये अपने कृष्ण को वाच कर रही है, ये हमारा अभिनय जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसी भावना के साथ में कीर्तन होना चाहिए, ऐसा निरस उसका मुख लटका दिया कीर्तन हो रहा है, कभी कोई कह दिया कभी फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं, उत्साह होना चाहिए कीर्तन। मानो आप कृपा आ रही है, लपक रहे हैं हम उस कृपा को, इस रूप में उत्साह के साथ में कीर्तन। अरे मरे 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 घोड़े हुए चलते हैं, घोड़ा मरा हुआ कृपा मरे हुए घोड़े चलते हैं, तो वो जो अपने आप नृत्य होगा इस भावना के साथ, एक दिन आएगा। इसलिए कीर्तन प्रधान है कल जीवन और सब है, ये भाव भी आएगा कीर्तन के साथ में। कीर्तन में कितने सुंदर सुंदर भाव है, राधा कृष्ण प्राण मोह, प्राण को निछावर कर रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जनने मरने मोर गति नहीं। ऐसी भावना अब है राधिका जी, हे कृष्ण आपके अतिरिक्त हमारी कोई गति ही नहीं है, कीर्तन तो इसको ऐसे भाव बोलिए तो याद नहीं है, कीर्तन की पुस्तक ले लीजिए। मैं जगन्नाथ जी में जो रथ यात्रा निकल रहा है उसके संबंध में बतलाऊं। चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया और संन्यास लेने का कारण क्या था, आराम से इधर में आ जाइए। जैसे शरीर में प्राण न रहे तो मृत्यु हो जाती है, ऐसे ये हमारे प्राण स्वरूप है, इनके बिना मैं बच नहीं सकता या बच नहीं सकता। जीवने मरने गति आर नहीं हो, जीवन और मरण में समस्त अवस्थाओं में इस जुगल किशोर की सेवा ही हमारी एकमात्र गति है। कालिंदी रे खुले, कालिंदी माने जमुना, जमुना के किनारे केली कदम्ब रवन, केली कदम्ब का एक पेड़ होता है जिसमें फूल और फल नहीं लगते हैं, केवल छोटे छोटे वो फूल लग करके गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उसको केली कदम्ब कहते हैं। अर्थात एक पेड़ होता है जिसमें कदम्ब के इतने बड़े बड़े फूल होते हैं और उससे फिर फल पक जाते हैं तो बच्चे लोग सब खाते हैं, खट्टा और मीठा होता है, तो वो तो कदम्ब है और यह केली कदम्ब। अर्थात जैसे गोपियां अविवाहित रह करके कृष्ण की सेवा की थी, केली कदम्ब भी वैसे ही, उसमें बड़ी सुगंध भी नहीं आती है, भौरे उस पर रखते हैं और मयूर उस पर केका केका करते हैं, तो उस वन में
रतन बेदीर ऊपर बसा वो दुजन, एक रत्न बेदी बनाऊंगा या बनाऊंगी और उसी के ऊपर में एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर मैं उनको बैठाऊंगी। श्याम गौरी अंग दिग, श्याम माने श्याम, गौरी माने राधिका, इन दोनों के अंगों पर चंदन की बिंदी, चंदन की रोली, चंदन का तिलक, चंदन का श्रृंगार लगाऊंगा। श्यामर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख से, और मैं चमर ढुलाऊंगा। ऐसा अहो मेरा कभी सौभाग्य होगा जो इस प्रकार से करते हुए उनके मुख चंद्र को, दोनों के राधा और कृष्ण जुगल किशोर के मुखारविंद का दर्शन करूं। घाटिया मलती माला दिव दुहार गले, मालती की सुंदर सुंदर सुगंधित मैं मालाएं गूंथ करके क्या दोनों के गले में कभी पहनाऊंगी? ऐसा हमारा कभी दिन होगा? अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, उनके अधरों में मुखार बिंद में सुंदर कर्पूर युक्त तांबूल को, तांबूल मैंने पान की बीड़ी को क्या मैं दे सकता हूँ? दूंगा, ऐसा मेरा कभी सौभाग्य होगा? ललिता विशाखा आदि सब सखी, ललिता और विशाखा आदि जितनी भी सखियां हैं वो हमें आज्ञा करेंगी कि ये सेवा करो, ये सेवा करो, पानी लाओ, कपड़े ले आओ, चंदन पीस कर ले आओ, रोली ले आओ, पंखा झलाओ, चमर ढुलाओ, ऐसी सेवा करेंगी। और उनकी सेवा पाते ही मैं आनंद से उन दोनों की सेवा में जुट गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलास करे नरोत्तम। नरोत्तम ठाकुर जी अपने को दीनहीन मान करके चैतन्य महाप्रभु के दासों के दासों के दासों का दास अपने को समझते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको ये सेवा आप लोग, यही मेरी अभिलाष। ऐसे ही सब इसमें भावना है, बैठ करके इनका कीर्तन करके साधक भक्त लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के विलाप पुष्पांजलि करते हैं और सब महात्माओं की दिन रात में भजन करते हुए बैठ करके दिन रात इसी की चिंता करते हैं और उसमें तन्मय हो जाए और उसी में कृष्ण का राधा जी का दर्शन करते हैं। मन बहुत बलवान है, उसको कंट्रोल नहीं कराया जा रहा, किंतु यदि वो कंट्रोल में हो जाए भगवान की कृपा से और भगवान की कथाओं, तो उसके द्वारा यहाँ पर बैठे हुए गोलोक वृंदावन में पहुंच सकते हैं। तन्मयता है, बहुत पावरफुल है ना। अभी जो कुछ कार्य करते हैं मन के द्वारा ही कर रहे हैं, मन में प्लान करते हैं फिर उसको कार्य में लगा लेते हैं, कार्य में परिणत करते हैं। उसी तरह से ये मन में संकल्प के बाद में यह इतना ठीक हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि वो यहाँ पर बैठे हुए कहाँ सेवा करेगा और शरीर के छूट जाने के बाद में शुद्ध होकर के कृष्ण की चरण में पहुंचा देगा। अभी वहां से एक पत्र आया हरिद्वार से, अभी जो मृत्यु होगी तभी सब कुछ फल मिल जाएगा। ये कह करके बतलाते और मैं बतलाते अंतर्ध्यान हो गए, ये नहीं बतलाइए वो कहाँ है, किस जगह है, केवल ये बतलाए नील माधव जी हैं, समुद्र के किनारे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमको जरूर इसी जन्म में हमको उनका दर्शन करना और उनकी सेवा पाना, इसलिए अपने मंत्री के लड़के को, अपने पुरोहित के लड़के को और बड़े बड़े अच्छे विद्वान लड़कों को चारों दिशाओं में भेज दिया। 6 महीना लगे, 1 वर्ष का समय देता हूँ, इसमें तुम लोग पता लगा करके आओ, एक एक बात निर्णय दे करके तो तुम लोग जा करके खुद करके जल्दी से। वो लोग चल पड़े और तीनों तरफ वाले कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने, 6 महीने में लौट आए, किंतु पूर्व की दिशा में जो गया था वो लौट आए, वो उनके पुरोहित जी का लड़का, बहुत ही सुंदर, शांत, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, सब प्रकार से जो
छह महीने तक उसको कोई नहीं मिला ये कहाँ है। छह महीने के बाद में वो समुद्र के किनारे गया जहाँ पर कि आजकल सूर्य जी का मंदिर है, उससे और भी समझो 100 मील दूसरी तरफ दक्षिण की तरफ वहाँ पर वो देखा एक सुंदर सा गांव है।
राजा को भी देखा,
राजा का वो पुरोहित का लड़का,
पुरोहित का लड़का
पूजा करके एक सुंदर सा गांव है, उसमें गांव के लोग रहते हैं, विशेष करके उसमें जाति की पूरी इसलिए सबरी कहलाती, तो वो सबर जाति के लोग हैं और बड़े श्रद्धा के साथ में रहते हैं। तो वो गांव में गया तो छटा निराली देखी, तो सुंदर पहाड़ियां हैं और सुंदर उपवन से हैं, समुद्र का भी बड़ा सुंदर सुंदर लहरियां आती, उसका मन को ऐसे कहा कि हो न हो ऐसे ही वातावरण में कहीं वो नील माधव जी कहीं, तो वो किसी से बतलाया नहीं मन की भाव, खोफिया पुलिस जैसा वो केवल खोज रहा है। तो सोचा कि कैसे पता लगाऊं, शाम हो गई और शाम हो गई तरह कहाँ, उसने सोचा जिसे कहीं अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति के घर में रहे, उसने कहा किसी से भाई इस गांव में कोई ऐसे श्रद्धालु पुराने आदमी हैं जिनके घर में मैं रात में ठहर सकता हूँ, हमको एक जरूरत हो गई आज ठहरने के लिए, आज जा नहीं सकता। लोगों ने इस गांव का जो मालिक है, मालिक माने उसमें प्रधान होते हैं, वो प्रधान बड़े श्रद्धालु हैं, उनके घर में जाओ सब प्रकार की तुमको व्यवस्था करते हैं, उनके घर में भी आइए। घर में और कोई था नहीं और एक छोटी सी उसकी 14 वर्ष की एक किशोरी बड़ी सुंदरी उसकी लड़की, तो जब उन्होंने कहा जैसे वो कहाँ है तो वो निकल करके आई, उसी आप किसको खोज रहे हैं, तो मैं उनको खोज रहा हूँ, वो मेरे पिताजी अभी बाहर गए हैं, अभी यहाँ नहीं है, पूजा करने के लिए गए हैं, वो लौट आएंगे, आप यहाँ पर कब तक ठहरिए। उसने खाट और बिछा दी चारपाई जैसे कि ग्रामीण में होता है, और ये तब तक प्रतीक्षा करें तब तक मेरे पिताजी आ जाते हैं। शाम थोड़ी सी हो गई, सूर्य अस्त होने का था, इतने में वो आया, सुंदर सुगंध उसके अंगों से निकलता है, कस्तूरी और ये सब की जो चीजें थी ना जो ठाकुर जी को चढ़ाया था उसके सुंदर सुगंध आ रही थी, और उतरी हुई माला लेकर के आ रहा था, जो हो ना हो कुछ बात है, इतनी सुगंधर सुंदर सुगंध मधुर तो हमने कभी जीवन में पाई नहीं। वो वहां पर रात में उन लोगों ने बड़े खातिर करके उसको रखा। इसके बाद में सवेरा हुआ तो उसको चला जाना चाहिए, किंतु वो गया नहीं। कहा जैसे आप कहाँ गए थे, तो वो किसी तरह से नहीं बतलाया, बहुत भेद लेना चाह नहीं बतलाया। कहा जैसा तब हमको काम निकालना होगा, तो उन्हीं का जाति का बन गया, ब्राह्मणत्व को उसने ऊपर से छिपा दिया, मेरी शादी हुई इसको भी छिपा दिया, और सुंदर तो युवक था ही, वो धीरे धीरे वहां पर रह करके और उस लड़की से प्रेम करने लगते, लड़की भी उसको रूप को देख करके और उससे प्रेम करने लगी, उसने बाधा नहीं दिया। तो देखा जी अच्छी बात है, अच्छी जाति का ये लड़का है, गुणी है, रूपवान है, मैं इसको घर जमाई कर दूंगा, घर ही में रखूंगा, हमारी बेटी भी घर में रहेगी, ये रहेगा। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में शादी और शादी होकर के दोनों रहने लगे। अब जब शादी हो गई तो लड़की का विश्वास इस पर पूरा हो गया, तो लड़की से इसने कहा कि देखो अब हम तुम तो दोनों एक आत्मा हो गए, हमारी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी ये बितलाओ जैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ को पूजा करने जाए, मैं उसको देखना चाहता हूँ, और तुम छल बल से किसी प्रकार से ये चीज का पता लगा दो। उसने कहा जिससे अभी तक तो हमको भी नहीं बतलाया और हमको जरूरत भी नहीं है, अच्छा तो ठीक है मैं बतला। तो लड़की ने पिताजी जब आए तो उनकी गोदी में बैठ गई और उनके ये पकड़ दिए और बड़े प्यार से अपने हाथों को उनके गले में लगा दिए, जैसे लड़कियां जीत करती हैं, और उसी जीत में उनके पिताजी आप कहाँ जाते हैं, जैसे तुमको क्या जरूरत है, मैं कहीं जाता हूँ, मैं पूजा करने जाता हूँ। पिताजी एक बात हमारी मैंने आपने शादी भी की तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, तो अब मैं यही मांगती हूँ कि हमारे जो पतिदेव हैं वो चाहते हैं उनका दर्शन करना, आप उनको दर्शन, ये तो कभी नहीं, ये बड़ा भाग्य, बहुत गोपनीय चीज है, मैं किसी को नहीं दिखलाता, विशेष विशेष जो लोग हैं वही इनका दर्शन करते हैं, दिखलाने से वो लेकर के कहीं चले जाएगा, इस पर विश्वास हमारा भी नहीं हो रहा है, यद्यपि जमाई बना है, किंतु वो यदि आप नहीं देते, नहीं उसको ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो मैं बीस खा करके मर जाऊंगा, उनके हाथ में तो यही बस पिताजी ये हो गए। अच्छी बात है, एक दिखलाऊंगा, किंतु एक शर्त, उसकी आंखों पर लाल कपड़े की पट्टी बांध करके ले जाऊंगा और बैलगाड़ी पर बैठा करके ले जाऊंगा, और जब विकट आ जाएगा तो उसको लेकर के दर्शन करा करके फिर आंखें बंद करके फिर जाऊंगा, रास्ता का पता है मुझे। ठीक, वो भी राजी हो गया। लड़की ने, लड़की बड़ी अकलमंद थी, उसने कहा जी आप ऐसे मत जाइए, आपको पता नहीं लगेगा, इसे सरसों ले लीजिए, पीली सरसों, और उसको बोते हुए जाइए, बरसात का दिन है, वो बरसात में मिट्टी में मिलने चाहिए, पानी मिलेगा और वो घट अंकुरित होकर के वो बढ़ जाएगा, फिर आप उसका रास्ता खोज लेंगे, चले जाएंगे। बस गाड़ी पर बैठा करके उसके आंखें बंद पट्टी से कर दी गई, और वो जब गया वहाँ जाकर के जब खोला तो देखा चारों तरफ में सुंदर घन जंगल है, और पास ही में एक सरोवर है, रोहिणी उस सरोवर का नाम है, और ठाकुर जी नीलमाधव रूप को देखते ही एकदम आश्चर्य से भर गया, जो वो यही था। उसने कहा उसके ससुर ने, मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा फूल लाने के लिए, चंदन लाने के लिए पूजा करूंगा, तब तक तुम यहीं पर ठहरो। तो वहीं पर देखने लगा, देखते जिस सरोवर की तरफ में देखा, एक कौवा आया डाल पर बैठा और ऊँग रहा था, और ऊँगते ऊँगते गिर गया, और गिरते ही उसका शरीर छूट गया पानी में डूबने से, और शंख चक्र गदा पर मिले करते, और एक गरुड़ जी आए, गरुड़ के ऊपर में बैठा गिर गया। कहा जैसे अब मैं भी यहीं पर प्राण छोड़ूंगा, वो रहा है काम सब, मैं ठाकुर जी के पास। तो पेड़ पर चढ़ रहा था, इसने मेरे ससुर आ गया, अरे ये क्या कर रहा है, इन्होंने अपने मन की बात बताई, कभी ऐसा मत करो, और इतने में आकाशवाणी हुई है, तुम्हारे द्वारा बहुत काम होगा, तुम ठहर जाओ, रुक जाओ, मरम्मत। इसके बाद में ठाकुर जी का पूजा अर्चन हुआ, सब होने के बाद में उसको बांध करके पट्टी ले आए, अब उसको विश्वास हो गया यही निर्माता इनकी बातें ये होती थी, अब हमको चलना चाहिए। इसे लड़की को समझा बुझा कर मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तुमको जीवन भर अब छोड़ नहीं सकता, तुम इस बात को पक्की रखो, मैं बहुत जल्दी आता हूँ, इनसे ये काम करो। अब उसको वो मालूम हो गया जो ये जाएगा रहेगा नहीं, बस ने इनको बांध करके रखे जान नहीं। फिर लड़की के समझाने से और उधर कुछ आकाशवाणी होगी, तो जाकर के राजा को कहा, राजा अपने दल बल स्त्री पुत्र परिवार धन खजाना लेकर के मालवा का रहने वाले मालवा मैंने उज्जैन मध्य भारत उज्जैन से वो चल पड़ा। जबकि समुद्र के किनारे गया, देखा जी सारी वो नगर कहाँ है वो तो देखा नहीं, पुरोहित का लड़का था विद्याधर अथवा कुछ उसका नाम था, तो वो देखा जी वो नगर तो है नहीं, और पहाड़ी जाने का रास्ता भी वो नहीं है, सब बालू से एकदम भर गया है।
वो गया और उसके आने का कैसा हो गया?
इतने में एक बार 6 महीना लग गया आने जाने में, तो उसमें पैदल का रास्ता करो, और वहाँ से कितनी दूर है, भयंकर रास्ते हैं, रेलगाड़ी से जाने में भी वन को देख करके डर लगता है, उसमें हाथी और बाघ सब और गंडार सब घूमते रहते, हम लोग उस रास्ते से गए हैं, नीला चले बड़ा घना घूम है, कुछ समय लग गया होगा, तो वहाँ पर जाएगा, देखा जी कुछ नहीं। राजा आया, राजा को बड़ा दुख हुआ, वो समुद्र के किनारे अपना कुछ आसन लगा करके बाहर जैसे ठाकुर जी आप तो अब छिप गए और मैं प्राण छोड़ता, बस अनशन पर बैठ गया, खाना पीना सब छोड़ कर सोदर का दिन। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी इसको लेकर के चले गए वैकुंठ में, वहाँ जा करके इनको दर्शन कराया उस निर्माता,
वो राजा को लेके चले गए इंद्रदुमन को,
इंद्रदुमन को चलो हम तुमको दर्शन करा देते हैं, दर्शन कराए। जब दर्शन कराया तो ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर जी अब मैं आपके लिए आया सेवा के लिए, और अब पृथ्वी के लोग को छोड़ करके वैकुंठ में आ गए आप पधारी। उन्होंने कहा जी देखो तुम जाओ, मैं इस रूप में नहीं जाऊंगा, और मैं 4 रूपों में जाऊंगा, वो होगा क्या, जगन्नाथ बलदेव भद्रा और चक्र, ये चार। और वो ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम जाओ समुद्र के किनारे, तुम प्रतीक्षा करो, एक लाल पेड़ की धड़ लंबा चौड़ा बहुत भारी बहता हुआ आएगा, उसमें शंख के चिन्ह रहेंगे, चक्र का चिन्ह रहेगा, बड़ा कठोर होगा वो, और उसको निकलवाना, निकलवा करके उसकी मूर्ति चार बनाना और उसी की प्रतिष्ठा करके पूजा करना, उसी रूप में जगत के सब लोगों को दर्शन दिलाना, और तुम उसी से ही रथ यात्रा करना, ये देश विदेश से लाखों लोग आएंगे, जो उस रथ यात्रा में आएंगे उनका दर्शन करेगा, उसमें कीर्तन करेगा, उनके रथ को खींचेगा, सबको बैठने, उनके दुख जितने संसार के हैं वो सब दूर हो जाएंगे। कितना कह करके ब्रह्मा के साथ में जबकि नीचे आए तब तक कितने जमाने पलट गए, जमाने पलट गए हैं, वो आदमी सब नहीं रहे हैं वहां से आने में,
आसपास भी नहीं रहा।
अब किसी प्रकार से किसी कारण से उनकी पत्नी केवल बची थी, और वो विद्याधर जो था वो कुछ बचा था, उसका ससुर बचा था, उसकी लड़की भी बची थी, और बाकी सब चेंज हो गया। अब वो आकर के लोगों से कहा और समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिनों के बाद में एक लाल वो धड़ माने पेड़ की नीचे वाला भाग बड़ा सुंदर वहां पर आकर के लग गया। उसमें देखा तो सचमुच में चक्र के चिन्ह है और लाल उसका। उन्होंने हाथियों को लगाया, आदमियों को बुलाया, पहलवानों को लगाया, लोगों को लगाया निकालने के लिए। वो निकालते निकालते हो गए, इतने दिन हो गए निकले नहीं, निकाल नहीं सकते। फिर आकाशवाणी ऐसे नहीं निकलेंगे। वो जो ब्राह्मण है जो कि पता लगाया था, उसकी पत्नी को उसको बुला और उसके ससुर को उसके ससुर को बुला, वो आकर के छुएंगे और सोने का रथ बनाओ, उनकी प्रार्थना से अपने आप ये रथ में चढ़ जाएंगे और सब सब काम हो। बस सोने का रथ बनाया, समुद्र के किनारे लगाया, और वो जो बूढ़ा आया, बूढ़ा ने उसको छुआ कि अविश्वावसु, और उसका वो जमाता विद्यापति वो आए, दोनों ने उसकी पूजा की, प्रार्थना की, अरे आप तो स्वयं भगवान हैं, जगन्नाथ जी हैं, नील माधव जी हैं, आप स्वयं रथ में चढ़िए, यही आपकी कृपा है, और स्वयं प्रकट होकर के जगत का कल्याण। ऐसा कहने के साथ में केवल जल थोड़ा सा उठाया और अपने आप रथ में चढ़ गए, भर करके रथ चलता हुआ एकदम जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है ना वहां पर आया। बहुत विशाल वहां पर ये बनाया गया, कोई कहते हैं कि जहाँ गुंडीचा मंदिर है वहीं पर आया, वहीं पर विशाल मंडप बना, और वहीं पर देश विदेश के कारीगरों को हुक्म दिया जैसे उनको बुला लाओ ये मूर्ति बनेगी। कोई भी मूर्ति वाला बनाने वाला है, उन्हें पहले होते थे ब्राह्मण ही मूर्तिकार, जयपुर में जितने भी मूर्तियां बनती हैं ना सब ब्राह्मण परिवार के लोग काम करते हैं, दूसरी कोई जाति नहीं। आजकल सिर्फ कुछ हो गया, अब तो कला होने लगी, मूर्ति नहीं होती है। तो वो ब्राह्मण सब आए बना रहे हैं किंतु उनकी छेनी टूट जाती है, वो भीतर में नहीं जाती, उसका था उसमें मुख बनाना है, हाथ बनाना है, और अंग प्रत्यंग आंख कान सब बनाना है, बन नहीं जाता। कुछ दिनों के बाद में बड़े चिंतित हो गए, तो उन्हीं से प्रणाम, प्रभु आप स्वयं प्रकट होइए। इतने में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बड़ा गंभीर तेज निकल रहा है बूढ़ा होने पर भी, दुबला पतला था पूरा, हाथ में उसके कुछ यंत्र थे, एक बैग। उन्होंने कहा जी मैं मूर्ति बनाने वाला हूँ, हमको पता लगा है ये यहाँ पर मूर्ति बननी है, तो आप आदेश कीजिए तो मैं मूर्ति बना दूँ। ये तो बड़े आनंद की बात है, उन्होंने एक मंडप बनाइए, उसमें एक दरवाजा रखिए, उस मंदिर में मैं कितना 22 ना 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलूंगा, 21 दिन में ये मंदिर पूरा तैयार कर लूंगा, और उसके बाद में कोई खोले और देखे, इसके बाद में प्रतिष्ठा हो। उसने कुछ अपने खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं दिया, और उसको लकड़ी को भीतर ले गए और ले करके 21 दिन तक दरवाजा बंद रखा। जब 5-7 दिन हो गया तो उसकी रानी जो थी गुंडिका जी, उनका नाम था रानी का, पति से बोली जैसे ये बिना खाए पिए ये ब्रह्महत्या होगी, ये तो कोई शब्द भी नहीं हो रहा, कुछ बन भी नहीं रहा है, न जाने क्या होगा, नहीं ये बूढ़ा मरेगा, इसलिए जल्दी से खोलिए और खोल करके उसको बचाइए, मूर्ति हो नहीं चाहिए, ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगना चाहिए। ठस जाओ थोड़ा सा, 5-6 दिन में आदमी मर नहीं जाता है, कितने हजार वर्ष लोग तपस्या करते हैं, तो मत। फिर 2 दिन गया, 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, यहाँ तक कि 10 दिन हो गया, अब किसी से अपराध नहीं। राजा ने कहा कि सचमुच में हो सकता है कि मर गया, तो कुछ दिन के बाद ही उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा को तोड़ दिया और खोला। कितने में 14 दिन के बाद बस खोल दिया, तोड़ करके दरवाजे भीतर गया तो वो ब्राह्मण मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोला कि यही तो खोना था, पूरा नहीं बना सका था, तुमने खोल दिया क्यों, और देखा जैसे वो बुरा है। अंतर्ध्यान स्वयं जगन्नाथ जी ही, नीम माधव जी ही अपने को अपने प्रकाश करना था, तो इसलिए उस समय तक गोल गोल आंखें हुई, गोल गोल ऐसे आ गए, हाथ अभी बना नहीं यहीं तक बना है, पैर भी अभी नहीं बना है, काजे यहीं तक हो, भगवान की इच्छा क्यों ऐसा हो। अच्छा खैर मूर्ति तो हो गई, मूर्ति होने के बाद में जगन्नाथ जी ने कहा देखो मूर्ति तो हमारी बनाई, अब प्रति वर्ष ऐसी यात्रा होगी जो मैं इसी दिन में 9 दिन के लिए मैं समुद्र के किनारे जाऊं, अपने मंदिर में रहूं और वहां से 2-3 मील दूर है गुंडीजा मंदिर, यहां पर आऊंगा, 9 दिन यहां रहूंगा, और जिस ससुर ने और जिसके जमाई ने हमारी भक्ति की थी, अब पहले ससुर जी हमारी सेवा करता था, उसके वंश के लोग 1 महीने तक उनकी सेवा करते, वही जो कुछ सेवा होगा मैंने सबल जाति के हैं किंतु उनको भी अधिकार है उस समय में, वही उनकी सब सेवा करता है, वहां पर ब्राह्मण और ये सब का नहीं, वो लोग सेवा करेंगे और बड़े प्रेम के साथ में हमारी रथ यात्रा होगी और उस रथ यात्रा में जगत के करोड़ों लोग शामिल होंगे। एक बात हो, राजा ने कहा सब आपकी एक शर्त मान ली, एक मेरी भी शर्त रहेगी। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी शर्त है, तो शर्त ये है, राजा ने कहा आप यदि प्रसन्न हो तो हमको वंश मत दीजिए, हमारा वंश न चले, हमारा वंश समाप्त हो जाए। ठाकुर जी ने क्यों, सब लोग वंश चाहते हैं, तुम नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता कि हमारे वंश में आएंगे तो कहेंगे ये ठाकुर जी मेरे हैं और किसी के नहीं, उस पर आधिपत्य चलाएंगे, इसलिए मैं राज्य जितना संग्रह किया है राज्य ठाकुर जी का रहेगा और ठाकुर जी ही इसके मालिक रहेंगे, ठाकुर जी की इच्छा से ही सब कुछ चलेगा, बाकी सब उसके सेवक रहेंगे, कोई मालिक नहीं होगा। यदि किसी ने मालिक होने का ऐसा किया तो उसका भी वंश न चले। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम हमारे पति इतना ये करता है तो ठीक है, मैं भी तुमको कहता हूँ तुम्हारा वंश ये टूटेगा नहीं, अब तुम्हारा ये ऐसे चलेगा। इस रूप में वो जो पूजा करने वाला तो था सबक, उसके कुल में जो चलेगा तो उसकी लड़की तो अब तुम्हारे पुरोहित के साथ में शादी है, तो पुरोहित जो पुरोहित की 2 स्त्रियां थी, एक पहले वाली और एक ये, तो पुरोहित का ब्राह्मण का वंश जो होगा वो ठाकुर जी का अर्चन पूजन और ये सब काम करेगा, अर्चन वाला काम जो ब्राह्मणों का काम होता है वो लोग वो करेंगे, और इस लड़की से जो पैदा हुए हैं जो सबक से ये लोग रसोई बनाएंगे, सुत्कार होंगे, और उसके वंश में जो उसके पिता के वंश में ये सब लोग हैं सबक जो पहले पूजा करता था वो लोग 1 महीने के लिए ठाकुर जी की पूरी सेवा करेंगे, जो कुछ वो लोग करेंगे और वही रथ पर चढ़ाएंगे और वही रथ पर ले जाएंगे, वहां पर भी सेवा करेंगे, वहां से ले आकर के तब छोड़ेंगे। तो ठाकुर जी को आज रथ में जो कल हुआ ना परसों हुआ तो उसमें चढ़ाता कौन है, ब्राह्मण लोग नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ा सकते, वो बड़े बड़े पहलवान लंबे चौड़े होते हैं, उनको दैता कहते हैं, तो लोग ठाकुर जी को गाली देते हैं, अरे साले चढ़ो, सीधी बात नहीं करते, साले साले करते हैं और न जाने क्या क्या गाली देते हैं। कहते हैं तू बेजन्मा है, तेरे कितने पिता हैं, तुम्हारी जाति नहीं है, तू भ्रष्ट है, तुम बहुत लंपट है, तुम माने जैसे गोपियां भी थी, गोपियां भी इतना नहीं देती, और ऐसे गाली चढ़ा देते हुए और खिलाते हैं पिलाते हैं लाल प्यार करके और धीरे 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 रस्त चढ़ाते हैं। एक समय की बात है वो चढ़ नहीं रहे थे, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार भी ने कहा ये सब ढकोसला है, उनको तो विश्वास नहीं है ठाकुर में, तो ये ऐसे ही ये सब खेला तमाशा ये लोगों को ठगते हैं। उन्होंने कहा जैसे ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, राजा की जरूरत नहीं, किसी की नहीं, हम तो अपने आप चढ़ा करके ले जाएंगे और ले आएंगे आराम के साथ, और पुलिस का पहरा लगा दिया, बड़ी व्यवस्था सुंदर ढंग से। ठाकुर जी से मंदिर से तो आ गए, राजा को बुलाया नहीं, उनको कोई प्रणाम मंत्र किसी से कुछ तो किया नहीं। अब ये चढ़ाने लगे तो दो हाथ चढ़ाते हैं तो दो हाथ नीचे चले आते, सारा दिन लग गया नहीं चढ़ाते, बहुत भारी हैं, सारा दिन जब किसी तरह से नहीं चढ़े तो पुरोहितों ने कहा यार राजा का अपमान कर रहे हो, राजा की प्रार्थना से चढ़ते हैं, ये स्वयं भगवान है, तुम लोग ऐसा मत करो, नहीं तो तुम लोगों का ध्वंस भी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। ये वहाँ के इतिहास में जो जगन्नाथ जी का इतिहास प्रति वर्ष कुछ न कुछ जो नई बातें हैं उसमें लिखा रहता है, तो उसमें वो लिपिबद्ध है। तो वो अंत में प्रधानमंत्री उस समय के मंत्री थे और वहाँ का गवर्नर, दोनों उस राजा के पास में गए और राजा से हाथ जोड़ करके कहा जी हमारी क्या जरूरत है भैया, उनको चढ़ा दो, उनको जो जैसा करो, हमको तो अपमान तो किया तो किया ही, अब मैं नहीं जाता। बहुत जब किया तब फिर वो आए, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रदक्षिणी की और उसका स्तुति करने के बाद में प्रभु अब तो आप प्रसन्न हो जाए, ये कह करके अब तो रस पर चलिए, बस हाथ से छुआ दो चार लगे अपने आप से। प्रति वर्ष ऐसा करते हैं, वो एक जैसे वो झाड़ू देते हैं, पहले सोना का झाड़ू होता था, अब तो सोना का झाड़ू नहीं, अब तो नारियल वाला झाड़ू, उसका मुठा केवल उसको भी झाड़ू देख रहे हैं कैसे झाड़ू दे रहा था, तो भी प्रसन्न है उससे, पहले सचमुच में रथ के ऊपर में वो झाड़ू दे रहा था, रथ के ऊपर में नहीं, नीचे मट्टी के ऊपर में झाड़ू देते हुए आगे आगे चलते थे और केवड़ा इत्यादि गुलाब जल सब छोड़ते हुए आगे आगे। ये तो जगन्नाथ जी का प्रकट का हुआ, और एक और इसमें लगी, वो क्या बात, ये पूरे पूरे क्यों नहीं प्रकट हुए, जब कृष्ण द्वारका में थे उस समय में गोपियां कुछ रुक्मिणी सप्तभामा और कंस की मैया पद्मा और जी बूढ़ी बहनियां थी, ये रोहिणी मैया थी, सब में एक विवाद छिड़ गया, कृष्ण ग्वालियों को क्यों प्रेम करते हैं, इतनी राजकुमारियां हैं, सत्यभामा हैं, रुक्मिणी हैं और सब हैं, एक एक से अपूर्व सुंदरियां हैं, जो विश्व की मानी ही सुंदरियां हैं, राजकुमारियां हैं, और उनको छोड़ करके दिन रात राधे राधे कह करके रोते हैं, विशाखा विशाखा करके रोते हैं, इनकी मैया देवकी और वसुदेव जी पिता हैं, इनको छोड़ करके मैया मैया यशोदा जी को पुकारते हैं, ये क्यों। विशेष करके एक दिन कृष्ण अनमने होकर के अभी सो रहे थे, 8 बज गया और सो गए, रात में उनका रुक्मिणी जी का कपड़ा पर अंचल पकड़ कर कहते हैं राधे राधे कर रहे हैं लगते लगते, और रोते रोते उनका सब बिस्तर तकिया सब कुछ बड़े दुखी हो रहे, आज उठ ही नहीं रहे, उस समय में एकदम बेहोश हो गए। बलदेव जी उनको उठाने के लिए गए, उनका भाव देखा तो वो भी बेहोश होकर के गए, अब तो चारों तरफ में करंदन मच गया, क्यों गोपियां कितनी इनको प्यार करती, इन लोगों को अंदाजा नहीं है, किसको अंदाजा है, रोनी में दिया जानते हैं, जैसे कृष्ण गोपियों को कितना प्यार करता है और गोपियां जितने कृष्ण प्यार करते हैं उससे लाख गुना प्यार करते हैं गोपियां करते हैं, गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं, अपना सर्वस्व दे देती हैं, सर्वस्व देने से भी प्रेम नहीं होता, कोई सिर भी दे दे तो प्रेम आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं। प्रेम एक निराली चीज, वो हमारी धरोहर है, प्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित है वो प्रेम। हम उसको गलती से इधर उधर में लगा रहे हैं, किंतु होनी चाहिए कृष्ण के प्रसन्न। रोहिणी मैया गोपों की, गोपियों की विशेष करके प्रेम की बातें कर रही हैं। कृष्ण उस समय में कहाँ है, थोड़ी देर के बाद में उठ करके गए राजसभा में। बलदेव जी उनके साथ में है, उद्धव जी हैं, सात्यकी जी हैं, अक्रूर जी हैं, सभी वहाँ पर सभा हो रही। और इधर में रोहिणी जी गोपियों की कैसी कैसी जो भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं हैं, कृष्ण के प्रति कितना उनका स्नेह और प्रेम है। पद्मा कंस की मैया वो कह रही है जैसे बेकार की बात, रोहिणी तू उसे झूठ, तुमने घूस खाया, ये उनकी बातें कह रही है। सचमुच में वो लोग प्यार नहीं करते, यदि प्यार करते तो उनको गोचारण के समय एक जूता भी तो नहीं दिया, एक छतरी भी तो नहीं दे दी ताल पत्र की,
पैसों से जोड़ रही।
और देखा जाए चरवाहा तो बिना पैसा का मिलता था नहीं, बिना पैसा का दो चरवाहा मिल गया, कौन मिल गया बिना पैसे के। और यदि कभी भूख लगती है मक्खन मांगा तो जो सोता उसको जड़ देती है, और वो दूसरों के घर में जाता है चोरी करने तो भी पकड़ करके उसको बांध देती है, अरे सुना जैसे वो ओखल में बांध दिया। तो यही प्रेम है। एक बात करो, ये जो कहते हैं हमारा बेटा है ये, तो जितना दिन तक उन्होंने खाया है उसका हिसाब कर लिया जाए, जितने दिन तक खाए और कितना दिन तक गैया चराया है उसका भी हिसाब कर लिया जाए, और हिसाब करके ये ठीक कर लिया जाए उसका कितना लेना है कितना देना है। यदि हमारा निकल जाता है, हमने अधिक कृष्ण के, हमारा बेटा हमारा घर का लड़का यदि गोचारण किया और हमारा पैसा उन पर निकलता है तो हम तो छोड़वा देंगे, हम कह देंगे पति से ये इसको छोड़। और यदि उनका कुछ मिलता है निकलता है तो सूद भी लगा करके हम उनको 10 रुपये दे करके उनको पूरा कर दें। आज से वो ना कहें कि हमारा बेटा है और हमारा प्रिय है और ये मत कहें, यही सब बातें हो रही हैं।